पृष्ठ संख्या 155, 24, भूपति राज गुरुदत्त सिंह। यह अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सआदत खां ने जब इनकी गड़ी गेरी, तब ये बाहर सआदत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया है। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सआदत की सेना समर सेन सोभानी है। भनत कविंद्र काली हुलसी असीसन को, सीसन को ईस की जमाती सरसानी है। तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी लय उड़ी, सोनी तो पियत ताकि उपमा बखानी है। प्यालो लय चीनी को नीके जोबन तरंग मानो, रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के दो रीति ग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए हैं, शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हंसती जबै वह धार, शशि मंडल ते कढ़ति छनी जनु पीयूष की धार। भय रसाल रसाल हैं भरे पुहूप मकरंद, मान सान तोरत तुरत भ्रमत भ्रमर मदमंद। 25 तोष निधि, ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद को लेकर बनाया। खोज में इनकी दो पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नक्षिक। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदारथ ते जहि में परमारथ स्वारथ पाई। अ उकते मुकते उलही कवि तोष अनोष भरी चतुराई, होत सबै सुख की जनिता बनी आवती जो बनिता कविताई। एक कहे हसी उधवजु ब्रज की जुवती तजी चंद्र प्रभासी, जाय कियो कह तोष प्रभु एक प्राण प्रिया लही कंस की दासी। जो हुते कान प्रवीण महासो हहा मथुरा में कहा मति नासी, जीव नहीं उबियात जबै ढिग पौढ़ती है कुबिजा कछुआसी। पृष्ठ संख्या 156। श्री हरि की छवि देखी बेको आँखियाँ अति रोमही में करी देतो, बैनन को सुनी बे हित सौन जितैतित सो करती करी हेतो। मोढिग छाड़ी न काम कहूँ रहे तोष कहे लिखितो विधि एतो, तो करतार इति करनी करिके कली में कल की रति लेतो। तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे किरणे सो घनी सरसाती, भीतर हो रही जात नहीं अखियां चकाचौंधी वह जाती हैं राती। बैठी रहो बलि कोठरी में कह तोष करो तु बिनती बहु भांति, सारसी नैनी ले आरसी सो अंग काम कहा कड़ी घामों में जाती। 26-27 दलपति राय और वंशीधर। दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहित हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए, जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों हैं। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरौल नभ मंडल मुलुक पर चढ़ो अक्क चक्कवे की तानिक किरण कोर, आवत ही सावत नक्षत्र जो ये धाये धाये घोर घमसान करी काम आये ठौर ठौर। ससहर सेत भयो सटक्यो सहमी ससी आमिल उलुक जाए गिरे कंदरन और दुंद देखी अरबिंद बंदी खाने ते भगाने पायक पुलिंद व मलिंद मकरंद चोर। 28 सोमनाथ। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग निरूपण में यह श्रीपति और दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800, सुजान विलास सिंहासन 32 पद्य में संवत 1807 पृष्ठ संख्या 157, माधव विनोद नाटक संवत 1809। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्तक रचना के सिवाय सतकवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन 32 के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। दिशी विदिशंते उमड़ी मढ़ी लीनो नभ छाणी दिए धुरवा जवासे जूत जरीगे डह डहे भये द्रुम रंचक हवा के गुण कहूं कहूं मोरवा पुकारी मोद भरीगे रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही सोमनाथ कहे बूंदा बूंदी हुना करीगे सोर भयो घोर चारो ओर मही मंडल में आए घन आय के उघरीगे प्रीति नई नित कीजत है सब सोच हलकी बतरानी परी है सीखी डिठाई कहाँ शशिनाथ हमें दिन द्वैकते जानी परी है और कहा लहिए सजनी कठिनाई गरे अति आनी परी है मानत है बरज्जो न कछु अब ऐसी सुजान ही बानी परी है झमकतु बदन मतंग कुंभ उतंग अंगबर बंधन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धधर कंचन मणिमय मुकुट जगमगे सुधर शीश पर लोचन तीन विशाल चार भुज ध्यावत सुरनर शशिनाथ नंद स्वच्छंद निति कोटि बिघन छर छंदहर जय बुद्धि बिलंब अमंद दुति इंदु भाल आनंद कर। 29 रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहां अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा और प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चलाया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं अंग दर्पण का ही है। अमीय हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1155 दोहे हैं और रस भाव नायिका भेद षट ऋतु 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अनेक ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा, जिनमें पदावली की गति द्वारा नाथ सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 158। धरती न चौकी नगजरी याते उर्मे लाए छाह परे पर पुरुष की जनितिय धर्म रसाए चख चली श्रवण मिल्यो चहत कच बड़ी छुवन छवानी कटे निज दरब धरयो चहत वक्ष स्थल में आनी कुमति चंद प्रति द्योस बड़ी मास मास कड़ी आए तब मुख मधुराई लखे फीको परी घटी जाए रमनी मन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत दुह और ऐचो रहे जिम बिबितिय को कंत तिय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निश्योस के दुओ भाव दर्शात। 30 रघुनाथ। ये बंदी जन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो काशीराज महाराजा बरिभंड सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं, काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। बिहारी सतसई की एक टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक समझना चाहिए। रसिक मोहन संवत 1796 अलंकार का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं है, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके प्राय सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कविता या सवैये का सारा कलेवर अलंकार को उदाहरित करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए, फूली उठे कमल से अमल हितु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस सियरे, दौर आए भौर से करत गुनि गुन गान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सुनियरे, सुरभि से खुलन न सुकवि की सुमति लागी, चिरी आसी जागी चिंता जनक के जियरे, धनुष पे ठाड़े राम रवि से लसत आजू, मीर कैसे नकत नरेंद्र भय पियरे। काव्य कलाधर संवत 1802 रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी भोग्यता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृग्या, सेना, नगर, गढ़ रक्षा, पशु पक्षी, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है, उसे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं, पृष्ठ संख्या 159। ग्वाल संग जैबो ब्रज गये न चरेबो एबो, अब कहा दाहिने ये नैन फरकत है, मोतिन की माल वारी डारो गुंजमाल पर, कुंजन की सुधी आए हियो धरकत है, गोबर को गारो रघुनाथ कछु याते भरो, कहा भयो महलनी मनी मरकत है, मंदिर है मंदर ते ऊंचे मेरे द्वार काके, ब्रज के खरी कतो हिय खरकत है, केंदो शेष देश ते निकसी पुहूमि पे आए, बदन उचाए बानी जस असपंद की, केंदो छीती चवरी उसीर की दिखावती है, ऐसी सोहे उज्ज्वल किरण जैसे चंद की, जानी दिन पाल श्रीनि पाल नंद लाल जुको, कहे रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की, छूटत फुहारे केंदो फूल्यो है कमल तासुक, अमलक अमंद मढ़े धार मकरंद की, सुधरे सिलाह राखे वायु वेग वाह राखे, रसद की राह राखे राखे रहे वन को, चोर को समाज राखे बजा और नजर राखे, खबरी के काज बहु रूपी हर फन को, आगम भखैया राखे सगुन लेवैया राखे, कहे रघुनाथ अविचार बीच मन को, बाजी हारे कबहुन अवसर के परे जन, ताजी राखे प्रजन को राजी सुभटन को, आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं, दरियाव पास नदी होएगी सो धावेगी, दरखत बेली आसरे को कभी राखता न, दरखत ही के आसरे को बेली पावगी, मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, रघुनाथ मेरी मति न्याव ही की गावेगी, वह मोहताज आपकी है आप उसके न, आप क्यों चलोगे वह आप पास आवेगी। 31 दूलह। ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक के मिले हैं, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण मिला है जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। कवि कुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के पृष्ठ संख्या 160 ग्रंथों में इसमें यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में अलंकार का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हा जी ने इसके संबंध में आप कहा है, जो या कंठाभरण की कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लहे, अलंकृति ठहराए। इनके कवि कुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। फुटकल जो कवित्व मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव दास मतिराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी। किसी कवि ने इन पर होकर यहाँ तक कहा है कि और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देखिए। माने सन माने तेई माने सन माने सन माने सन माने सन मान पाइया तू है, कहे कवि दूल्हा अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिनही को छाइया तू है, जानत है जेव तेव जात है वीराने द्वार, जानी बुझी भूले तिनको सुनाइया तू है, काम बस परे को गहत गरुर तवा, अपनी जरूर जा जरूर जाइय तू है, धरी जब वाही तब करी तुम नाही, पाय दियो पली काही नाही नाही के सुहाई हो, बोलत मैं नाही पट खोलत मैं नाही, कवि दूल्हा उछाही लाख भाती न लहाई हो, चुंबन में नाही परिरंभन में नाही, सब असन बिलासन में नाही ठीक ठाई हो, मेली गल बाही के लेकिन चित चाही यह, हाथ भली नाही सो कहाँ न सीखी आई हो, उरज उरज धसे बसे उर आड़े लसे, बिन गुण माल गरे धरे छवि छाए हो, नैन कवि दूल्हा है राते तुत राते बैन, देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो, जावक सुलाल भाल पलक न पी कलिक, प्यारे ब्रज चंद सुचि सूरज सुहाय हो, होत अरुणोद यही कोद मति बसी, आज कौन घर बसी करी आए हो, सारी की सनौट सब सारी में मिलाए दीनी, भूषण की जेब जैसे जेब जहिया तू है, कहे कभी दूल्हा छिपाए रद छद मुख, नेह देखी सौती न की देह दहिया तू है, बाला चित्र साला ते निकसी गुरुजन आगे, पृष्ठ संख्या 161 कीनी चतुराई सो लखाई लहिया तू है, सारी का पुकारे हम नाही एजु राम राम कहो नाही नाही कहिया तू है, फल विपरीत को जतन सो विचित्र, हरि ऊंचे होत वामन भे भेली के सदन में, आधर बड़े ते बड़ो आधे अधिक जानो, चरण समायो नाही चौदहो भुवन में, आधे अधिक ते आधार की अधिकताई, दूसरो अधिक आयो ऐसा गगन में, तीनों लोक तन में अमान्यो ना गगन में, बसे ते संत मन में कितेक कहो मन में। 32 कुमार मणि भट्ट, इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसायल नामक एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा है। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। इनका सवैया देखिए। गावे बधु मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर आई, छाई कुमार नई छिति में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई, ऊंचे अटा चढ़ी देखी चहु दिसी, बोली ओ बाल गरो भरी आई, कैसी करो हरे हियरा, हरी आए नहीं उलही हरी आई। 33 शंभुनाथ मिश्र, इस नाम के कई कवि हुए हैं, जिनमें से एक संवत 1806 में, दूसरा 1867 में, तीसरे 1901 में हुए हैं। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीपक नामक तीन रीति ग्रंथ बनाए हैं। यह असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीपक में अधिकतर दोहे हैं, कवित्व सवैया कम। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हैं। एक कवित्व दिया जाता है, आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धौंसा की धुकार धुरी परी मुह माही के, भय के अजीरन ते जीरन उजीर भय, चूल उठी उर में अमीर जाहिताही के, वीर वीर खेत बीच बर छील बिरु झानो इते, धीरज न रहो शंभु कौन हु सिपाही के, भूप भगवंत वीर ग्वाही के, खलक सब स्याही लाए बदन तमाम पात साही के। 34 शिव सहाय दास, ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी दो ग्रंथ बनाए। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है। जैसे करो रुखाई नाहिन बाम, बेगी ही ले आऊं घनश्याम, कहे पखानो भरी अनुराग, बाजी तांत की बूझो राग, बोले निठुर पिया बिनु दोष, आपू ही तिय बैठी गही रोस, कहे पखानो जेही गही मौन, बैल न कूद्यो कूदी गौन। 35 रूपशाही। ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि हैं। दो दोहे नमूने के लिए दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 162। जगमगात सारी जरी झलमल भूषण ज्योति, भरी दुपहरी तिया की भेंट पियासो होती। लालन बेगी चलो न क्यों बिना तिहारे बाल, मार मरोरनी सो मरती करिए परसी निहाल। 36 ऋषिनाथ। ये असनी के रहने वाले बंदी जन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और अकबर कायस्थ के आश्रम में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी हैं। इसका रचना काल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी थे, एक कवित्व दिया जाता है, छाया छत्र वह करी करती मही पालन को पूरो फैलो रजत अपार वह, मुकुत उदार वह लगत सुख सोनन में, जगत जगत हंस हास हीर हार वह, ऋषिनाथ सदानंद सुजस बिलंद तम वृंद के हरैया चंद्र चंद्रिका सुधार वह, हितल को शीतल करत घनसार वह, महितल को पावन करत गंगाधर वह। 37 बैरीसाल। ये असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। इनके वंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने भाषा भरण नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं, नहीं कुरंग नहीं ससक यह, नहीं कलंक नहीं पंक, बीस बिसे बिरहा दही गही दीठी शशि अंक, करत कोकनद मदहिरद तुव पव हर सुकुमार, भय अरुण अति दबि मनो पाए जेब के भार। 38 दत्त। ये माढ़ी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित्य लता नाम की एक अलंकार की पुस्तक लिखी है, जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक सवैया दिया जाता है, ग्रीष्म में तपे भीषम भानु, गई बनकुंज सखी न की भूल सो, घाम सो बाम लता मुरझानी, बयारी करे घनश्याम दुकूल सो, कंपत यो प्रगट्यो तन सेद उरो जन दत्त जु थोड़ी के मूल सो, द्वय अरविंद कलीप कलीन पैमानो, गिरह मकरंद गुलाल के फूल सो। 39 रतन कवि। इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह ने इनका जन्म काल संवत 1798 लिखा है, इससे इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाही के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लक्षणा व्यंजना काव्य भेद ध्वनि रस दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत रखे हैं। संवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस है। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं। कुछ नमूने लीजिए, बैरिन की बाहिनी को भीषण निदाघ रवि, कुबलय केली को सरह से सुधाकर है। पृष्ठ संख्या 163। दान झरी सिंधुर है, जग को बसुंधर है, बिबुद कुलानी को फलित काम तरु है, पानी पमनिन को रतन रतनाकर को, कुबेर पुन जनन को क्षमा मही धरु है, अंग को सनाह बन राह को रमा को नाह, महाबाह फतेह साह एके नर बरु है, काजर को कोरवारे भारे अनियारे, नैन कारे सटकारे बार छहरे छवान छह, श्याम सारी भीतर भबक घोरे गातन की, ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी वै, मृग मद बेंदी भाले में दी याही आभरण, हरण ही एक तू है रंभा रति ही अवै, नीके नथुनी के तैसे सुंदर सुहात, मोती चंद पर चय रहे सुमानो सुधा बुंद है। 40 नाथ हरिनाथ। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, जिसमें एक एक पद के भीतर कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं, फिर एक साथ सबके उदाहरण कविता आदि में देते गए हैं। कविता साधारणतः अच्छी है। एक दोहा देखिए, तरुणी लसती प्रकाश ते, मालती लसती सुवास, गोरस गोरस देत नहीं, गोरस चहती हुलास। 41 मणिराम मिश्र। ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छप्पनी और आनंद मंगल नाम की दो पुस्तकें लिखी। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। छंद छप्पनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। 42 चंदन। ये नाहिल पुमाया जिला शाहजहांपुर के रहने वाले बंदी जन थे और गौड़ राजा के श्री संघ के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगिणी ये तीन रीति ग्रंथ लिखे। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं। पहला केसरी प्रकाश, दूसरा चंदन सत्सई, तीसरा पथिक बोध, चौथा नक्षिक, पांचवा नाम माला कोश, छठा पत्रिका बोध, सातवा तत्व संग्रह, आठवा शीत वसंत कहानी, नौवा कृष्ण काव्य, दसवा प्राग्ञ विलास। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही, सीता वसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। शीत वसंत की कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रसिद्ध है। उसमें भी माता के अत्याचार से पीड़ित शीत वसंत नामक दो राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और अंगों पर भी थी। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस संदल रखते थे। इनका दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है। ब्रजवारी गवारी दे जाने कहा यह चातुरता न लुगायन में, पुनि बारी नि जानी अनारी नि है रुचि एति न चंदन नायन में, छवि रंग सुरंग के बिंदु बने लगे इंद्र वधु लघुतायन में, चित जो चहे दी चकी सी रहे दी कही दे महिनी इन पायन में। 43 देवकी नंदन। ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम सशली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र और 1857 में अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका पृष्ठ संख्या 164 नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में ये कुंवर सरफराज गिरी नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ रहते थे, जहाँ इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्दा मऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नक्षिक भी है। शिव सिंह को इनके इस नक्षिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं। श्रृंगार चरित्र में रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मंजी हुई और भाव प्रौढ़ हैं। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला वैचित्र की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। दो कवित्व नीचे दिए जाते हैं। बैठ ही रंग रावट में हेरत पिया की बाट, आए न बिहारी भई निपट अधीर में, देवकी नंदन कहे श्याम घटा गिरी आई, जानी गति प्रलय की डरानी बहुवीर मैं, सेज पै सदाशिव की मूर्ति बनाए पूजी, तीनी डर तीन हो की करी तदबीर मैं, पाखन में सामरे सुलाखन में अखेवट, ताखन में लाखन की लिखी तस्वीर मैं, मोती न की माल तोरी चीर सब चीरी डारे, फेरी कहना जयहों आली दुख विकरारे हैं, देवकी नंदन कहे नोखे नाग छौनन के, अलके प्रसून नोची नोची निरबारे हैं, मानी मुख चंद भाव चोंच दई अधरन, तीनों ये निकुंजन में एके तार तार हैं, ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे तैसे, मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं। 44 महाराज राम सिंह। ये नरवल गढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर तीन ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार दर्पण रस निवास संवत 1839 और रस विनोद संवत 1860। अलंकार दर्पण दोहो में है। नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। उदाहरण लीजिए, सोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर, मनोनील मनि शैल पर नाचत राजत मोर, दमकन लागी दामिनी करण लगे घनरोर, बोलत माती कोयली बोलत माते मोर। 45 भान कवि। इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रंजोर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्राय बराबर ही वीर भयानक अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पिष्ट पेषण के उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी उन्तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्राय पुष्ट और परिमार्जित है। रस मतवारे ये जो रावर दुलारे तब, बाजत नगारे भय गालिब दिली से पर, दल के चलत भर भर होते चारों ओर, चालती धरनी भारी भार सो पनीस पर, पृष्ठ संख्या 165, देखी कै समर सन्मुख भय ताही समय, बरनत भान पैज कै के बिसे बीस पर, तेरी समसेर की सिपत सिंह रन जोर, लखी एके साथ हाथ अरिन के शीस पर, घन से सघन श्याम इंदु पर छाए रहे, बैठी तहां असित द्विरेफन की पातिसी, तिनके समीप तहां खंज किसी जोरी लाल, आरसी से अमल निहारे बहु भांतिसी, ताके ढिग अमल लौहे विद्रुम से, फरकति ओपजामे मोती नकी कांतिसी, भीतर ते कढ़ती मधुर बीन कैसी धुनि, सुनी करी भान परी कानन सुहातिसी। 46 थान कवि। ये चंदन बंदी जन के भांजे थे और डोंडिया खेरे जिला रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम थान राय था। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ चंडरा बैसवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण विचार, रस भाव, भेद, गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग रागिनियों के नाम आए तो उनके भी लक्षण कह दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्र काव्य भी रखे हैं। सारांश यह कि इन्होंने कोई सर्वांग पूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। ह्रस्व वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानमती का पिटारा न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की सी ख्याति होती। इनकी रचना के दो नमूने देखिए। दासन पै दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोथी कर बिना सुर मंडल मढ़त है, आसन कमल अंग अंबर धवल मुख, चंद तो अमल रंग नवल चढ़त है, ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, जाको जस विधि ऐसो पंडित पढ़त है, ताकि दया दीठी लाख पाथर निराखर के, मुख ते मधुर मंजु आखर कढ़त है। कलुष हरणी सुख करनी शरण जन, बरनी बरनी जस कहत धरनी धर, कलिमल कलित बलियत अग खलगन, लहत परम पद कुटिल कपट तर, मदन कदन सुर सदन बदन ससी, अमल नवल दुति भजन भगत वर, सुर सरित अवजल दरस परस करी, सुर सरी सुभगति लहत अधम नर। 47 बेनी बंदी जन। ये बैंती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रम में रहते थे। इन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ पृष्ठ संख्या 166 संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने की अपने भड़ौवाओं के लिए। इनके भड़ौवाओं का एक संग्रह भड़ौवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भड़ौवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहास पूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के लिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाला लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथिनी की निंदा की है। तिमिर लंग लय मोल चली बाबर के हलके, रही हुमायूं संग फेरी अकबर के दल के, जहांगीर जस लियो पीठी को भार हटायो, शाहजहां करी न्यावताही पुनि मांड चढ़ायो, बल रहित भई पौरुष थक्यो भगी फिरत बन स्यार डर, औरंगजेब करनी सोई लय दीनी कविराज कर। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छीटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत, इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है पर कुछ कृपा की है। जैसे बाजे बाजे ऐसे डल मऊ में बसंत, जैसे मऊ के जुलाहे लखनऊ के ललक दास। इनका टिकैत प्रकाश संवत 1849 में और रस विलास संवत 1874 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1849 से 1890 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए। अली डसे अधर सुगंध पाए आनन को, कानन में ऐसे चारु चरण चलाए हैं, फटी गई कंचुकी लगे ते कट कुंजन के, बेनी बलहीन खोली बार छबि छाए हैं, बेग ते गवन कीनी धक धक होत सीनो, उरध उषा से तन सेद सरसाए हैं, भल प्रीति पाली बन मालिके बुलाई, बेको मेरे हित आली बहु तेरे दुख पाए हैं, घर घर घाट घाट बाट ठाट ठाट ठटे बेला और कुबेला फिर चेला लिए आस पास कवि न सो बाद करें भेद बिन नाद करें महा उन्माद करे धर्म करम नाश बेनी कवि कहें विभिचारी न को बाद सहा अत न प्रकाशत न सत न शरम सास लल न ललक नैन मैन की झलक हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास चीटू को चलावे को मसा के मुख आपू जाए श्वास की पवन लागे कोसन भगत है पृष्ठ संख्या 167 एनक लगाए मरु मरु के निहारे जात अनु परमाणु की समानता खगत है बेनी कवि कहे हाल कहाँ लो बखान करो मेरी जान ब्रह्म को बिचारी बो सुगत है ऐसे आम दीन दया राम मन मोद करी जाके आके सरसो सुमेरी सी लगत है 48 बेनी प्रवीण ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जिनके आश्रम में रहते थे जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नव सतरंग नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित न हुआ। इनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदी जन भड़ोवा वाले से इनके कुछ एक बार कुछ वाद हुआ था जिसे प्रसन्न होकर इन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक आबू चले गए और वहीं इनका शरीर पात हुआ। इन्हें कोई पुत्र न था। इनका नव सतरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं। परीति काल के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इनमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। भोर ही न्योती गई थी तुम्हें वह गोकुल गाँव की ग्वालिनी गोरी आधिक राति लबेनी प्रवीण कहा ढिग राखी करी बरजोरी आवे हंसी मोही देखत लालन भाल में दीनी महावर घोरी एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ मांगी हूँ रंचक रोरी जानो न मैं ललिता अलिताही जो सोवत माही गई करी हंसी लाए हिये नक के हरि के सम मेरी तव नहीं नींद बिनासी ले गई अंबर बेनी प्रवीण ओढ़ाए लटी दुपटी दुखरासी तोरी तनी तन छोर आभूषण भूली गई कर दिन कुफासी घनसार पटीर मिले मिले नीर चहे तन लावे न लावे चहे न बुझे बिरहाग न झार झरी हु चहे घन लागे न लावे चहे हम तेरी सुनावती बेनी प्रवीण चहे मन लावे न लावे चहे अब आवे विदेश ते पीतम गेह चहे धन लावे न लावे चहे काली की गूथी बाबा की सौम्य गजमोती ने की पहरी अति आला आई कहाँ ते यहाँ पुखराज की संग ए जमुना तट बाला नहात उतारी हो बेनी प्रवीण हसे सुनी बैनन नैन रसाला जानती ना अंग की बदली सबसो बदली बदली कहे माला शोभा पाई कुंज भवन जहाँ जहाँ कीन हो गौन सरस सुगंध पवन पाई मधुपनी है पृष्ठ संख्या 168 बीथी न बीथिरे मुक्ताहल मराल पाए आली दुसाल साल पाए अनगनी है रैन पाई चांदनी फटकसी चटक रुख सुख पायो पीतम प्रवीण बेनी धनी है बैन पाई सारिका पढ़न लागी कारिका सुआई अभिसारिका की चारु चिंता मनी है 49 जसवंत सिंह द्वितीय ये बघेल छत्री और तेरवा कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया है। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे एक शालीहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविता देखिए घनन के ओर सोर चारों ओर मोरन के अतिचित चोर तैसे अंकुर मुनै रहे कोकिलन कुकहु कहोते बिरही नहीं है लूक से जगत अचीर चारण न चुने रहे झिल्ली झनकार तैसो पिकन न पुकार डारी मारी डारी डारी द्रुम अंकुर सुने रहे लूने रहे प्राण प्राण प्यार जसवंत बिनुकारे पीरे लाल उदय बादर उने रहे 50 यशोदानंद इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शेर सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नायिका भेद ही मिलता है जो निस्संदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। इसमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधि भाषा में हैं। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित हैं। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए। संस्कृत: यदि च भवति बुध मिलन किम त्रिधिवेन, यदि च भवति षठ मिलन किम निरण्येन। भाषा: अहिरिन मन के गहिरिन उतरु न देई, नैना करे मथनिया मन मथिलेई, तुर्किनी जाति हुरकिनी अति इतराई, छुवन न देई इजरवा मुरि मुरि जाई, पीतम तुम कचलो या हम गजबेली, सारस के असी जोर या फिरो अकेली। 51. करण कवि: ये षटकुल काने कुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदू पति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संबत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक दो रीति ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य में इन्होंने लक्षण व्यंजना ध्वनि भेद रस भेद गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है, इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कविता देखिए। कंटकित होत गात विपिन समाज देखी, हरी हरी भूमि हेरी हियो लरज तु है, एते पै करण धुनि परति मयूरन की, चातक पुकारी तेह ताप सरज तु है। पृष्ठ संख्या 169। निपट चवाई भाई बंधु जे बसत गाँव, पाँव परे जानी के न कहु बरज तु है, अरजो न माने तु न गरजो चलत बार, अरे एरे घन बैरी अब काहे गरज तु है। खल खंडन मंडन धरणी उद्धत उदित उदंड, दस मंडन दारुण समर हिंदू राज भुजदंड। 52. गुरदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल रस अलंकार गुण दोष शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद देखिए। मुख ससी ससी दून कला धरे की, मुकुतागन जावक में भरे, ललित कुंद कलि अनुहारी के, दसन है विषभानु कुमारी के, सुखद जंत्र की माल सुहाग के, ललित मंत्र किंधो अनुराग के, भ्रिकुटी यो विषभानु सुताल से, जनु अनंग सरासन को हसे, मुकुर तो पर दीपति को धनी, ससी कलंकित राहु विथा घनी, अपर ना उपमा जगमय लहे, तव प्रिया मुख के सम को कहे। 53. ब्रह्मदत्त, ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्वत विलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कविता देखिए। कुशल कलानी में करण हार की रति को, कवि कोविदन को कल्प तरवरु है, सील सम्मान बुद्धि विद्या को निधान, ब्रह्म मति मान हंसन को मान सरोवर है, दीप नारायण अवनीप को अनुज पैरो, दीन दुख देखत हरत हर बर है, गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी को नीको, गनि गज बकस गरीब परवर है। 54. पद्माकर भट्ट, रीति काल की कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीति काल की कविता इनकी और प्रतापशाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर ह्रासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गुंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदे में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गाँव प्राप्त किए। वहाँ से वे फिर जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, जहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर पृष्ठ संख्या 170। जी का जन्म संवत 1810 में बांदे में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोगकर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नौने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में एक गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ रहते थे। फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। संवत 1856 में सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघोबा के यहाँ गए और एक हाथी 1,00,000 रुपया और 10 गांव पाए। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी यह बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्मावरण बनाया जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कविता पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज भंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी का समीर हुको, पिंजर सुघेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दलप करी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दह पट्टी पटना हुको झपट करी कबहु कलता कलकत्ता उड़ावे गो। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित काव्य भी इनका दोहे चपाइयों में है, पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। संभव है वह इनका न हो। मतिराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ ऐसा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा के सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ा करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। पृष्ठ संख्या 171। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिका सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी जिनमें यह जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव पद्यों में पाई जाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत संयत रूप में। भाव मूर्ति विधान कल्पना का क्या कहना है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। फागु की भीर अभिरन में गई गोविंद लय गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पितंबर कमर ते सुबिदा हुई मेड़ी सुबिदा दई मेड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आई ओ खेलन होरी, आई संग आलिन के ननद पठाई नीठी सोहत सोहाई सिस इड़री सुपटकी, कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर लागी घट भरन नवेली नेह अटकी, ताही समय मोहन ज बांसुरी बजाई तामे मधुर मलार गाई और बंसीवटकी, तान लागे लटकी रही न सुदी घूंघटकी घर की न घाट की न बाट की न घटकी, गोकुल के कुल के गली के गोप भावन के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरे गुण अगुण गने नहीं, तौलो चली चतुर सहेली याहु कोद कहूँ निक्या कह निहारी ताही भरत मने नहीं, हाँ तो श्याम रंग में चुराए चित चोरी चोरी बोरत तो बोरे पर निचोरत बने नहीं, आरस सो आरत संभारत नसी से पट गजब गुजारति गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुरास सरसारत ऐसे बिथुरी बिराज बार हिरन के हार पर, छाजत छबिले छिति छहरी छरा के छोर भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर, एक पग भीतर एक देहरी पैधर एक कर कंज एक कर है कि वार पर, मोहि लखी सुवत बिथोरी गो सुबेनी बनी तोरी गो हिये कोहार छोरी गो सुगैया को, पृष्ठ संख्या 172। कहे पद्माकर त्यो घोरी गो घनेरो दुख बोरी गो विशासी आज लाज है कि नैया को अहित अनैसो कैसो कौन उपहास या ते सोचन खरी में परि जोवती जुनैया को बुझी है चवैया तब कहो कहा दैया इत पारी गो को मैया मेरी सहज पे कन्हैया को। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे औरे तो औरे लो अचाक बिना घोरे घुरी जाएगी। सिरे उपचार न घनेर घर सारा नसो देखते ही देखो दामिनी ल दूरी जाएगी। तो ही लगी चन जीरो चेती है न चंद मुखी चेतगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। चालो सुनी चंद मुखी चित्त में सुचान करे तित बिन बागन घनेरे अली घूमी रहे। कहे पद्माकर मयूर मंजुनाचत है चाये सो चकोर नी चकोर चुमी चुमी रहे। कदम अनार आम अगर अशोक थोक लतली लतनी समेत लोने लोने लगी भूमि रहे। फूली रहे फली रहे फबी रहे फैली रहे झपी रहे झली रहे झुकी रहे झुमी रहे। तीखे ते गवाही जे सिलाही चढ़े घोड़न पे स्याही चढ़े अमित अरिंदन की एल पे। कहे पद्माकर निशान चढ़े हाथी न पे धूरी धर चढ़े पाक शासन के सैल पे। साजी चतुरंग चमुजंग जीती बे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त कर फैल पे। लाली चढ़े मुख पे बहाली चढ़े बाहन पे काली चढ़े सिंह पे कपाली चढ़े बैल पे। ए ब्रजचंद गोविंद गोपाल सुनियो क्यों न एते कलाम किए मैं। त्यो पद्माकर आनंद के नद हो नंद नंदन जान लिए मैं। माखन चोरी के खोरी न वह चले भाजी कछु भय मान जिए मैं। दूरी न दौरी दूरियो जो चहो तो दूरो के न मेरे अंधेरे हिए मैं। 55 ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवा राम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं। इनका कविता काल संवत 1879 से लेकर 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1889 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। रसिकानंद अलंकार, रस रंग संवत 1904, कृष्णजू को नक्षिक संवत 1884 और दूषण दर्पण संवत 1891। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, हमीर हट संवत 1881 और गोपी 25। और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। पृष्ठ संख्या 173। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक नहीं थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और शरत ऋतु सुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाक् विदग्धता भी इनमें अच्छी है। शरत ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्व सवैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। ग्रीष्म की गजब झुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी। भीजे खस बीजे न झूले हु ना सुखात सेद, गात न सुहात बात दावा सी डरा पिनी। ग्वाल कवि कहें कोरे कुंभन ते कूपन ते, लैले जल धार बार बार मुख था पिनी। जब पियो तब पियो अब पियो फिर अब, पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी। दूसरा, मोरन के सोरन की नाको न मरोर रही, घोरहु रही न घन घने या फरद की। अंबर अमल सर सरिता विमल भल, पंख को न अंक और उड़न गरद की। ग्वाल कवि चित्त में चकोरन की चैन भय, पंथी न की धूर भय दूषण दरद की। जल पर थल पर महल अचल पर, चांदी सी चमक रही चंदनी सरद की। 3 जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी, यहाँ ताकि खूब खूबी खूब खूबी नब गाहना। जाकी बद जाती यहाँ चारण में, ताकि बद जाती वहाँ ओराहना। ग्वाल कवि वे ही परम सिद्ध सिद्ध जो है जगत, वे ही पर सिद्ध ताकि यहाँ वहाँ सराहना। जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना है, जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाव पियो देव लेव यहीं रह जाना है। राजा राव उमराव के थे बादशाह भय, कहाँ थे कहाँ को गए लग्यो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान, ऐसे देश देश घूमी घूमी मन बहलाना है। आए पर वाना पर चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। पृष्ठ संख्या 174। 56 प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदी चंद के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं, जयसिंह प्रकाश संवत 1852, श्रृंगार मंजरी संवत 1889, श्रृंगार शिरोमणि संवत 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्नचंद्रिका सत्सई की टीका संवत 1896, जुगल नक्षिक सीताराम का नक्षिक वर्णन, बलभद्र नक्षिक की टीका। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया था। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची गई। इसमें कवित्व, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार उहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुंच केवल साहित्यिक रूढ़ी के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादी के सब अंग तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद्य पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए। सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेली को रही क्या कही, कौन स्वाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी, निद नीर भरी गगरी ढरकावे। सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ा वृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही ओर पहुंचती हैं। वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं, घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यही व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग रहा करता है, अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यवना को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ी के ही सहारे हुई है। जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा में आग की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा के स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्य तो इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचा कर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह एक बराबर समान चलती है, उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही घटी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष तीन चरणों में पृष्ठ संख्या 175 यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम तीन चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत ही पद योजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती हैं। पहला, चंचलता अपनी तजी कह, रस ही रस रस सुंदर पीजियो, को कितेक कहे तुमसो, तिनकी कही बातन को न पति जियो, चोज चवाइन के सुनियो न, यही इक मेरी कही नित कीजियो, मंजुल मंजरी पै हो मलिंद, बिचारी के सार संभारी कह दीजियो। दो, तड़पे तड़िता चह ओर नते, छितिछाई समीरन की लहरें, मदमाते महागिर श्रृंगन पै, गनमंज मयूरन के कहरें, इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर घुमानन सो गहरे, घनये नब मंडल में छहरे, घरे कहु जाए कहूँ ठहरे। तीन, कानी करे गुरु लोगन की, न सखी न की सीखन ही मन लावती, एंड भारी अंगराती खरी, कत घूंघट में नय नयन नचावती, मंजन के दृग अंजन आंजती, अंग अनंग उमंग बढ़ावती, कौन स्वभाव री तेरो पर्यो, खिन आंगन में खिन पौरी में आवती। चार, कहा जानी मन में मनोरथ बिचारी कौन, चेती कौन काज कौन हेतु उठी आय प्रात, कहे परताप छिन डोली बो पगन कहूँ, अंतर को खोली बो न बोली बो हमें सुहात, ननद जिठानी सतरानी अनखानी अति, रिस के रिसानी सुन हमें कछु जानी जात, चाहो पल बैठ रहो चाहो उठी जाओ तो न, हमको हमारी परी बूझे को तिहारी बात। पांच, चंचल चपला चारु चमकत चारु ओर, झुमी झुमी धुरवा धरनी परसत है, शीतल समीर लगे दुखद वियोगिन, संयोगिन न समान समाज सुख साज सरसत है, कहे परताप अति निविड़ अंधेरी महामार्ग चलत नाही नेकु दरसत है, झुमड़ी झलानी चहुकोद ते उमड़ी आज धारा धर धारण अपार बरसत है। छे, महाराज राम राज राव रो सजत दल, होत मुख अमल आनंदित महेश के, सेवत दरी न केते गब्बर गनीम रहे, पन्नग पताल त्यों ही डर न खगे सके, कहे परताप धरा धसत त्रसत कसमसत कमट पीटी कठिन कले सके, कहरत कोल दहरत है दिगीस दल, लहरत सिंध थहरत फन से सके। पृष्ठ संख्या 176। 57, रसिक गोविंद, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरि व्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरि व्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपुताना के रहने वाले और नटानी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का गुमाना, चाचा का मोतीराम और बड़े भाई का बालमुकुंद था। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चलता है, संभवतः और भी होंगे। 9 ग्रंथ ये हैं। पहला, रामायण सूचनिका, 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। यह संवत 1858 के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है। चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समुझाए, दिए पुत्र तब ताड़ का मग में मारी जाए, छाड़त सर मारी छोड़ो पुनि प्रभु हत्य सुबाहु, मुनि मख पूरन सुमन सुर बरसत अधिक उछाह। दो, रसिक गोविंदानंद घन, यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है जिसमें रस नायिका भेद अलंकार गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इनका निर्माण काल वसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसो अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी यथास्थान है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है। उत्तर, निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि, अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारक सहायक है जे, लोक में इन्हीं को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। अब टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत तत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त सन्य अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्म स्वाद सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भी। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसो अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं पर बहुत से दूसरे कवियों के उदाहरण के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण दत्ते साल समंतरम इत्यादि को देखिए हिंदी में किस सुंदरता से लाए हैं। आलस सो मंद मंद धरा पे धरत पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित चाय के, रोकत द्विगन छिन छिन प्रति लाज साज, बहुत हंसी की दीनी बानी बिसराय के, बोलती बचन मृदु मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तीन है, सुंदर बिलोक बंक भ्रिकुटी नचाय के। तीन, लक्ष्मण चंद्रिका, रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संवत 1886 में लक्ष्मण कनकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। चार, अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज खड़ी बोली पंजाबी पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। पृष्ठ संख्या 177। 5, पिंगल, छः समय प्रबंध राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। सात कलयुग रासो इसमें 16 कवित्वों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्व के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय कठिन कराल कलिकाल चली आयो है यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। आठ रसिक गोविंद चंद्रालोक के भाषा भूषण के ढंग के अलंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। रचना काल संवत 1890 है। नौ युगल रस माधुरी रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां दी जाती हैं। मुकलित पल्लव फूल सुगंध पराग ही झारत जुग मुख निरख विभिन्न जन राय लोन उतारत फूल फलन के भार डार झुकियो छवि छाजे मनु पसारी दई भुजा देन फल पथिकन काजे मधु मकरंद पराग लुब्ध अलि मुदित मुदित मत्त मन बिरद पढ़त ऋतुराज निपति के मनु बंदी जन।